लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने 24 अप्रैल बुधवार को संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में विश्व भर से आए विश्वासियों और तीर्थ यात्रियों के संग आम दर्शन समारोह में भाग लिया। संत पापा ने सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nelle scorse settimane abbiamo riflettuto sulle virtù cardinali: prudenza, giustizia, fortezza e templanza.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। हमने अपने विगत सप्ताहों में विशिष्ट सद्गुणों, धैर्य, न्याय, निष्ठा और सहनशीलता पर विचार मंथन किया है। ये हमारे लिए कार्डिनल गुण है, जैसे कि हमने इन चारों सद्गुणों पर कई बार जोर दिया है। ये चारों गुण अति प्राचीन समय के ज्ञान से संबंधित हैं, जो ख्रिस्तीयता से पहले ही प्रचलित हैं। ख्रिस्त के पहले से ही ईमानदारी को सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में उल्लेख किया गया है, विवेक को कार्य की नियमावली, साहस को जीवन का एक मूलभूत आधार जो सबों की भलाई के लिए हो, तो वहीं संयम को जरूरी मापदंड स्वरूप निरूपित किया गया है, जिससे अति पर नियंत्रण हो सके। मानव जाति की यह विरासत ख्रिस्तीयता से प्रतिस्थापित नहीं हुई है, बल्कि विश्वास में इनका विकास हुआ है। वे परिशुद्ध और संगठित हुए हैं। इस भांति यदि हम देखें, संत पापा ने कहा कि हर नर और नारी के हृदय में अच्छाई की खोज करने की एक योग्यता है। हमें पवित्र आत्मा से नवाजा गया है, जिससे जो उसे ग्रहण करते हैं वे अपने जीवन में अच्छाई और बुराई के बीच स्पष्ट रूप से अंतर स्थापित कर सकते हैं, जिससे वे बुराई का परित्याग कर अच्छाई से संलग्न रहें, और ऐसा करते हुए वे अपने विश्वास में पूर्णता की अनुभूति कर सकें। संत पापा ने कहा, लेकिन जीवन में पूर्णता की ओर यात्रा जो हर व्यक्ति का लक्ष्य है, ख्रिस्तीय अपने में एक विशेष खुशी का अनुभव करते हैं जो यीशु ख्रिस्त की आत्मा से सहायता स्वरूप आती है। यह हमारे लिए तीन अन्य ख्रिस्तीय विशिष्ट सद्गुणों से जुड़ा है, जिसकी चर्चा हम बहुधा एक साथ नए विधान के लेखों में पाते हैं। ये मूलभूत गुण जो ख्रिस्तियों के जीवन की विशेषताओं को प्रकट करते हैं, विश्वास, भरोसा और प्रेम है। संत पापा फ्रांसिस ने इन तीन गुणों को एक साथ मिलकर घोषित करने का आह्वान किया।
Sono tre virtù che noi diciamo adesso insieme, dopo la fede, la speranza e la carità. Diciamolo insieme: la fede, la speranza.
ख्रिस्तीय लेखकों ने इन्हें ईश शास्त्रीय गुणों की संज्ञा दी है, जैसे कि वे उन्हें प्राप्त करते और ईश्वर के संग अपने संबंध में जीते हैं। उन्हें इस दूसरे से अलग निरूपित करते हुए वे उन्हें कार्डिनल गुणों की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वे एक अच्छे जीवन की धुरी का निर्माण करते हैं। ये तीन गुण हमें बपतिस्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। पहला और दूसरा ईश शास्त्रीय और कार्डिनल गुण इस भांति बहुतेक रूपों में सुसंगठित तरीके से चिंतनों के रूप में रखा गया है, जिसके फलस्वरूप वे सप्त ऋषि रचना का निर्माण करते हैं, जो बहुधा सात महापापों की सूची से विपरीत है। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा ईश शास्त्रीय सद्गुणों के कार्यों को इस रूप में परिभाषित करती है। ईश शास्त्रीय सद्गुण ख्रिस्तीय नैतिक क्रियाकलापों की आधारशिला है। वे उन्हें सजीव रूप देती और उसे विशेष संरचना प्रदान करती हैं। वे हमें शिक्षा देती और नैतिक जीवन को सजीव बनाती हैं। वे गुण ईश्वर के द्वारा विश्वासियों के हृदय में अंकित की गई हैं, जिससे वे उनकी संतानों की तरह व्यवहार करते हुए अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। विश्वास, भरोसा और प्रेम, ये तीनों मनुष्य की क्षमताओं में पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उनके कार्य की प्रतिज्ञा हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा,
il rischio, parliamo di rischi, mentre il rischio delle virtù cardinali è quello di generare uomini e donne eroiche nel compiere il bene, ma tutto sommato.
वहीं कार्डिनल सद्गुणों की जोखिम हमारे लिए यह है कि इसके द्वारा नर और नारियां अपने में साहसिक कार्य करते हैं, लेकिन वे अपने में अकेले अलग रहते हैं, जबकि ईश शास्त्रीय गुणों का महान उपहार हमें पवित्र आत्मा में जीवन यापन करने को अग्रसर करता है। ख्रिस्तीय अपने में कभी भी अकेला नहीं है, वह अपने में भला कार्य अपनी महानता व्यक्तिगत प्रयास से नहीं, लेकिन एक नम्र शिष्य के रूप में अपने गुरु यीशु के पीछे चलता उसका अनुसरण करता है। ईश शास्त्रीय सद्गुण आत्मनिर्भरता के लिए एक महान औषधि है। कितनी बार कुछ नैतिक रूप से दोष रहित नर और नारियां अपने जानने वालों की नजरों में अभिमानी और अहंकारी होने की जोखिम में पड़ जाते हैं। इस खतरे के संबंध में यीशु हमें सचेत कराते और सुसमाचार में अपने शिष्यों को सलाह देते हैं, तुम भी सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। अहंकार एक शक्तिशाली विष है, इसकी एक बूंद ही जीवन की सारी अच्छाइयों को नष्ट करने के लिए काफी है। एक व्यक्ति जो हजारों तरह के भले कार्यों को करता है, अपने में लोगों की प्रशंसा को धारण करता है, यदि उसने उसे सिर्फ अपने लिए किया है, अपने को ऊंचा उठाने के लिए, तो क्या वह एक सद्गुणी व्यक्ति हो सकता है? संत पापा ने कहा, नहीं, अच्छाई केवल लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक साधन भी है। अच्छाई के लिए बहुत विवेक की आवश्यकता होती है, इसके लिए नम्रता अति जरूरी है।
Il bene ha bisogno soprattutto di spogliarsi di quella presenza a volte troppo ingombrante che è il nostro io.
इससे भी बढ़कर यह हमें अपने अहंकार को दूर करने की मांग करती है, जो कभी कभी भार के रूप में हम में व्याप्त रहता है। जब मैं सारी चीजों का केंद्र बिंदु बन जाता तो यह सारी चीजों को बिगाड़ देता है। यदि हम जीवन के सारे कार्यों को अपने लिए करते हैं तो क्या यह प्रेरणा अति महत्वपूर्ण होती है? इन सारी परिस्थितियों को सुधारने हेतु जो हमारे लिए कभी कभी दुखद होता है, ईश शास्त्रीय सद्गुण हमारी बहुत मदद करते हैं। वे हमारी असफलता की घड़ी में विशेष होते हैं, क्योंकि अपने नेक मनोभावों के होते हुए हम बहुत बार गिर जाते हैं, जैसे कि वे जो रोज गुणों का अभ्यास करते कभी कभी गलती कर बैठते हैं। हम सभी जीवन में गलती करते हैं, क्योंकि हम सभी पापी हैं। जीवन में सबों के द्वारा गलती होती है, संत पापा ने कहा। बुद्धिमता सदैव स्पष्ट नहीं होती है, चाह सदैव सुदृढ़ नहीं रहती है, हमारी भावनाएं सदैव नियंत्रित नहीं की जाती हैं, साहस से हम सदैव भय पर विजयी नहीं हो सकते हैं, लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदयों को खोलते हैं तो वे ईश शास्त्रीय सद्गुणों को हम में जागृत करते हैं, और तब यदि हम अपना विश्वास खो देते तो ईश्वर हमारे विश्वास के द्वार को पुनः खोलते हैं। यदि हम निराश हो जाते तो ईश्वर आशा का संचार करते हैं। यदि हमारे हृदय कठोर हो जाते तो ईश्वर उसे अपने प्रेम से कोमल बनाते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने वैश्विक शांति की अपील की, युद्ध के विनाशकारी परिणामों पर जोर दिया और शांतिपूर्ण समाधान एवं सुलह की वकालत करते हुए यूक्रेन, फिलिस्तीन, इजराइल और म्यांमार जैसे संघर्ष ग्रस्त देशों के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। संत पापा फ्रांसिस ने आज आम दर्शन समारोह में उन देशों के लिए भी अपनी अपील शुरू की जिनके लिए वे लगातार शांति का आह्वान करते हैं, और कई अन्य लोगों के लिए जिनका उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन जो उनकी प्रार्थनाओं में शामिल हैं। संत पापा फ्रांसिस मध्य पूर्व और विशेष रूप से गाजा पर अपनी गहरी नजर रखे हुए हैं। संत पापा ने कहा वहाँ युद्ध में उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ता है। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच शांति के लिए जो दो स्वतंत्र और अच्छे संबंधों वाले राज्य बन सकें, हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ समय पहले मेरे विचार पूर्वी यूरोप में संघर्ष की ओर मुड़ गए थे, उन युवा यूक्रेनियों की ओर जो सैनिक के रूप में एक युद्ध में मरने के लिए चले गए, जो अन्य सभी की तरह संत पापा को पीड़ा देता है। एक तरफ वे लोग हैं जो पीड़ित हैं और एक तरफ वे लोग हैं जिन्हें इनसे लाभ होता है। संत पापा ने याद दिलाया कि युद्ध हमेशा हार होती है और इस बात पर प्रकाश डाला कि जो लोग इन त्रासदियों से लाभ उठाते हैं वे हथियार निर्माता हैं। अंत में संत पापा ने कहा आइए हम शांति के लिए प्रार्थना करें। और संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन में घाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर मुहम्मदू बाउमिया का स्वागत किया। वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में बुधवार ये आम दर्शन समारोह से पहले संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के संत पापा पॉल सिस्टम के छोटे हॉल में घाना गणराज्य के उपराष्ट्रपति डॉक्टर महम्मदू बाउमिया का स्वागत किया। संत पापा से मुलाकात के बाद डॉक्टर बाउमिया ने वाटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर से मुलाकात की। बयान के अनुसार राज्य सचिवालय में बातचीत सौहार्दपूर्ण रही और परम धर्मपीठ एवं घाना के बीच अच्छे संबंधों पर प्रकाश डाला गया। विज्ञप्ति में कहा गया कि विशेष ध्यान देश की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति के कुछ पहलुओं पर केंद्रित था, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में।
बातचीत के दौरान मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, खासकर पश्चिमी अफ्रीका और गिनी की खाड़ी के सामने आने वाली सुरक्षा समस्याओं पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। उधर वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में आयोजकों ने इटली के फोंडासियोने एता ग्रांदे अर्थात बुजुर्गों का संस्थान द्वारा प्रायोजित 27 अप्रैल के एक कार्यक्रम का अनावरण किया, जो दादा दादी और पोते पोतियों को आज की दुनिया में बुजुर्गों की भूमिका और योगदान को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में वाटिकन के संत पापा पोल सिस्टम सभागार में एक साथ लाएगा। पीढ़ियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना और सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में तीसरी पीढ़ी को बढ़ावा देना 27 अप्रैल के कार्यक्रम दुलार और मुस्कुराहट का लक्ष्य है, जो वाटिकन के संत पापा पॉल सिस्टम सभागार में होगा। 27 अप्रैल को लगभग 6,000 दादा दादी, बुजुर्ग और पोते पोतियां संत पापा फ्रांसिस से मिलेंगे। बैठक सोमवार सुबह वाटिकन के प्रेस कार्यालय में इटली के फोंडासियोने एता ग्रांदे सहित आयोजकों के साथ प्रस्तुत की गई। यह आयोजन ख्रिस्तीय मूल्यों पर आधारित है, जो बुजुर्गों के अधिकारों और समुदाय के संबंधित कर्तव्यों को उजागर और संवेदनशील बनाता है। जीवन के लिए परमधर्मपीठीय अकादमी के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष विंचेंसो पालिया कहते हैं कि इस पहल का उद्देश्य बुढ़ापे पर नए दृष्टिकोण पेश करना है। उन्होंने इस समृद्धि पर जोर दिया और बताया कि यह एक बोझ नहीं बल्कि सभी उम्र के लोगों के लिए एक संसाधन है। उन्होंने कहा कि तीसरी पीढ़ी को दी गई विरासत को फिर से खोजा जा सकता है और यही कारण है कि इस कार्यक्रम में दादा दादी और पोते पोतियों को शामिल किया जाएगा, जिनके बीच एक विशेष सद्भाव, एकजुटता और स्नेहपूर्ण आयाम है जो अन्य पीढ़ियों के बीच हमेशा मौजूद नहीं होता है। उधर शरण चाहने वालों को रवांडा में निर्वासित करने की अनुमति देने वाले कानून को मंजूरी देने के ब्रिटेन के हालिया फैसले की इंग्लैंड और वेल्स में कैथोलिक कलीसिया की सहायता एजेंसियां CAFOD सहित मानवीय संगठनों ने निंदा की है। कुछ शरण चाहने वालों को रवांडा भेजने के कानून को ब्रिटेन संसद द्वारा मंगलवार को मंजूरी दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए CAFOD ने कहा कि यह कई स्तरों पर निराशा है। वाटिकन रेडियो वाटिकन न्यूज से बात करते हुए नील थ्रोन्स ने योजना को करुणा और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी की कमी बताया। उन्होंने कहा, हम निराश हैं कि यह बिल आगे बढ़ गया है और हम कई स्तरों पर निराश हैं। मुझे नहीं लगता कि यह उस देखभाल और करुणा को दर्शाता है जो संत पापा फ्रांसिस और अन्यों ने हमें उन लोगों को देने के लिए कहा है जो संघर्ष और संकट की स्थितियों से भाग रहे हैं। उन्होंने न केवल ख्रिस्तीय मूल्यों पर ध्यान देने में कानून की विफलता और हमारे भाइयों एवं बहनों के स्वागत, सुरक्षा, एकीकरण और बढ़ावा के संत पापा के आह्वान पर प्रकाश डाला, लेकिन उन्होंने यूक्रेन जैसे क्षेत्रों से आए शरणार्थियों के व्यापक स्वागत पर ध्यान देते हुए विधेयक और ब्रिटिश लोगों की भावनाओं के बीच अलगाव पर भी जोर दिया। थॉर्न्स ने टिप्पणी की, जहां हमने यूक्रेन और अन्य देशों से आए लोगों को आते देखा है, लोगों ने उन शरणार्थियों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह देश की मनोदशा और स्थिति को दर्शाता है। अंत में उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया कि कमजोर लोगों की रक्षा के लिए कानूनी मानवीय नीतियां हो सकती हैं और होनी भी चाहिए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।